हरे कृष्णा। भगवद गीता भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 34। बोर्ड में जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं, सब पीछे से भी देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, Somebody should wash. It's becoming white. Kapur diye, jol diye, muche niye. Chanchala hi manaha Krishna pramathi balavad dridham tasyaham निग्रहं मन्ने बायोर इव सुदुष्करम्। चंचल ही मन कृष्ण, चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ने बायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ने वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम, चंचल ही, निश्चय ही, मनः मन, कृष्णा हे कृष्णा, प्रमाथि विचलित करने वाला, क्षुब्ध करने वाला, बलवत बलवान, दृढ़म दुराग्रही, हठीला, तस्य उसका, अहम मैं, निग्रहम बश में करना, मन्ने सोचता हूँ, बायो वायु की, ईवा तरह, सुदुष्करम कठिन। हे कृष्णा, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। आप भी बोलिए मेरे साथ, हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इस श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्षण करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलता स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इन्द्रियाणि हयान्नाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्तुहं मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है, जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्यों के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यहाँ की समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि ये है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य वस्तुओं शेष नहीं रह जाएंगी। चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवद गीता का इस षष्ठ अध्याय में भगवान ध्यान योग या अष्टांग योग के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। अष्टांग योग का उद्देश्य होता है, जैसे योग सूत्र का पहला सूत्र है, पातंजलि का योग सूत्र का पहला सूत्र है, अतः चित्त वृत्ति निरोध। योग का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का मतलब है, चित्त का मतलब है मन, वृत्ति का मतलब है भावना। मन का कार्य है भावना, मन का कार्य होता है चिंतन। तो उसका वृत्ति को, मन का जो वृत्ति, उसको निरोध करना। निरोध का मतलब रोकना या वश में लाना। तो ये है योग का उद्देश्य, अष्टांग योग का उद्देश्य। और यहाँ ये अष्टांग योग के बारे में सुनने के बाद भगवान से अर्जुन भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मन को वश में लाना असंभव है। कोई वायु को वश में ला सकता है? हाँ, नहीं। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि बायोरिव सुदुष्करम, मन को वश में लाना, तस्याहं निग्रहं मन्ने बायोरिव सुदुष्करम, ये मन को निग्रह करना, हाँ, अर्थात मन को वश में लाना, मन को दमन करना। जैसा योग का उद्देश्य है चित्तवृत्ति का निरोध करना, हाँ, वही बात अर्जुन कह रहे हैं कि योग का जो उद्देश्य है वो मेरे लिए संभव नहीं है, है ना। योग का उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध है, और अर्जुन कह रहे तस्साहंग निग्रहंग मन ने बायोरिव सुदुष्करम, वायु को वश में लाना जैसा कठिन है, मन को वश में लाना भी वैसा ही कठिन है। मतलब वायु को वश में लाना असंभव है, मन को भी वश में लाना असंभव है। अच्छा, अब सोचिए अर्जुन कैसा व्यक्ति था, आपको मालूम है। अर्जुन महारथी थे। अर्जुन का एक नाम है सब्बसाची। अच्छा, अर्जुन का मन का भी भावना, मन का भी क्रिया देखिए। आपको शायद याद है द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेने को तैयार किया। क्या किए थे उनने, द्रोणाचार्य ने, एक पेड़ के ऊपर, पेड़ के बीच एक काठ की बनवाया एक चिड़िया रखा, और उसको आंखें को भेद करने को निर्देश दिया। हाँ, तो एक के बाद दूसरे को बुलाया, पूछा क्या तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर क्या बोला, मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं आकाश देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं पंछी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य बोले नहीं होगा, चलो। तो ऐसे अंत में जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन क्या बोला, मैं केवल वो चिड़िया का सिर, सर देख रहा हूँ, और क्या देख रहे हो। उसका केवल वो आंखें देख रहा हूँ, बस, ठीक है। तो आप देखिए अर्जुन का मन कितना वश में था, कितना एकाग्रता अर्जुन को था, कि वो और कुछ नहीं देख रहा था, उसका मन एकदम केवल वो चिड़िया का सर और आंखें देख रहा था। तो वो अर्जुन अब कह रहे हैं भगवान को कि मन को वश में लाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अच्छा, अर्जुन और के अर्जुन को और कार्यकलाप कैसा था आप देखिए। हाँ, द्रौपदी का सायंबर सभा में जो ये भेद कैसा भेद करने को था, पानी में देखकर ऊपर चक्र के ऊपर जो एक माछ का एक मछली था, वो मछली का आंख भेद करने वाला करने को था, और वो चक्र घूम रहा था और चक्र में केवल एक सा छोटा सा एक छेदा था और वो घूम रहा था, उसके बीच से बाण को घुसाकर वो मछली को आंख भेद करने वाला करना था अर्जुन सका। तो आप देखिए, आप सोचिए कितना एकाग्रता मन का अर्जुन को था। फिर वो अर्जुन कह रहे हैं कि मन को अपना वश में लाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप सोचिए हम और आप का क्या कहना। ये योग अभ्यास हम क्या कर पाएंगे? पर पहले जो विचार किया था इस अध्याय का और श्लोकों के बारे में, उसमें ये भी विचार हम किया था कि योग अष्टांग योग जो होता है उसका कार्य क्या होता है, अंग क्या क्या होता है, एक अंग में क्या होता है, एक अंग है होता है कि प्राणायाम, श्वास लेना बंद कर देना। कोई सकेंगे? दो मिनट, एक मिनट, परंतु ये एकदम रोक देते थे। योगी को रोक देना पड़ता है। प्राणायाम का उद्देश्य होता है कि श्वास रोक देना, बिल्कुल। वो केवल खाना ही खाना बंद नहीं कर देते हैं, वो श्वास भी रोक देते हैं। जैसे आज भी आप जानते होंगे शायद, हिमालय में ऐसे कोई योगी हैं जो पर्वत के ऊपर गुफा में रहते हैं, साल में एक बार आते हैं नीचे, जहाँ एकदम बर्फ है और कुछ नहीं है, ऊपर पहाड़ के ऊपर, वहाँ उन्होंने ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, और साल में एक बार आकर केवल थोड़ा सा मधु पीते हैं। एक विशेष मधु मिलता है, उनको पता है कहाँ मिलता है, पद्म मधु मिलता है, कमल का मधु, वो थोड़ा सा एक चम्मच जैसा पीकर फिर चले जाते हैं ऊपर, और साल भर कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा, खाना केवल साल भर में एक बार ही नहीं, थोड़ा सा मधु ही नहीं, वो श्वास भी नहीं लेते हैं। साल में शायद एक बार खाते हैं और महीना में एक बार श्वास लेते हैं, फिर भी क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है? कितने साल भर तपस्या कर रहे हैं? आप तो जानते हैं विश्वामित्र कितना साल तक तपस्या किया था? 64,000 साल तक, 64,000 साल तक तपस्या किया, और उद्देश्य क्या था? विश्वामित्र का उद्देश्य था ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने के लिए। विश्वामित्र क्षत्रिय था, वो ब्राह्मण बनने चाहा। वशिष्ठ मुनि के साथ कुछ संघर्ष हुआ था, तो संघर्ष के बाद वो सोचा कि ब्राह्मण का शक्ति क्षत्रिय से अधिक है, तो वो सोचा कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, जय श्री श्री गौर निताय की। तो वो सोचा कि क्षत्रिय का जो ये है शक्ति है वो सही नहीं है, पूरा नहीं है, उससे भी अधिक शक्ति प्राप्त होना चाहिए, तो उसके कारण वो ब्राह्मण बनने चाह। तो ऐसे कितने साल तक तपस्या किया, 64,000 साल तक। और बाद में क्या हुआ आपको मालूम है? तो मेनका इंद्र ने सोचा, देखो ये तो ये तपस्या कर रहे हैं शायद मेरा सिंहासन लेने के लिए, ये तपस्या जो हो रहा है इसका उद्देश्य शायद मेरा जो इंद्रत्व है, जो स्वर्ग लोक का जो सिंहासन है उसको अधिकार करने के लिए। तो ये सोचकर इंद्र ने उसको तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा? मेनका को भेजा। और उस समय विश्वामित्र का बाहर का चेतना बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये भी देखिए योग का एक अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सारे इंद्रियां को दमन अपना वश में ले लेते हैं, अपने अंतर्मुखी कर लेते हैं सारे इंद्रियां को। तो मतलब आंखों से कुछ नहीं देखते हैं, कान से कुछ नहीं सुनते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श अनुभूति नहीं कर पाते हैं, जीवा के द्वारा रस को आस्वादन नहीं होता है, और नाक के द्वारा घ्राण नहीं ग्रहण करते हैं। तो ये सारे इंद्रियां को जो वृत्ति है उसको रोक दिया था। परंतु एक इंद्रिया जो है उसको रोकना बहुत कठिन है। जैसे देखिए हम अगर आंखें बंद कर दिया तो हम कुछ नहीं देखेंगे। अगर मुंह बंद कर लिया तो कुछ रस आस्वादन नहीं करेंगे। परंतु एक इंद्रिया को बंद करना मुश्किल है, वो कौन सी इंद्रिया है? कान। और उस कानों के द्वारा मेनका का जो नुपुर का जो झुनझुन आवाज जो था वो घुस गया और उसका ध्यान भंग हो गया। वो जो नुपुर का जो झंकार इतना सुंदर था तो उसको आंखें खोल गया। आंखें खोलने से क्या हुआ? सामने मेनका को दर्शन हुआ। और मेनका का दर्शन करते हुए 64,000 साल का जो तपस्या बर्बाद हो गया। तो ये देखिए योग साधन, ये जो योग साधन है ये कितना कठिन है, कितना कठिन है। उसके कारण अर्जुन कहा, चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। कृष्ण मन चंचल है। चंचल का मतलब चलन चलना, चन चल, हर समय चल रहा है। मन का वृत्ति वैसा है, हर समय चल रहा है, मन रोकता नहीं कभी भी। मन को रोकना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन सरल था, उसलिए सही रूप से अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि ये मन को वश में लाना, मन को दमन करना, मन को वृत्ति को रोकना संभव नहीं होगा। तो अगर अर्जुन के लिए यह संभव नहीं था तो हमारे लिए? तो उसके कारण भगवान ऐसे समझा रहे हैं अर्जुन को। और अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भगवद गीता का अंतिम उपदेश क्या है? भगवद गीता का अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ समझाने के बाद जब अर्जुन देखा, देखिए अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन जैसे योग के बारे में जब सुन रहे थे, इस अध्याय के अंत में भी देखेंगे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, योगिनामोपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम सामे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपी सर्वेशम, मतलब सारे योगियों में से, सर्वेशम सर्व समस्त योगियों में से, योगी नाम अपी सर्वेशम मत गते नान्तरात्मनः, मत गते मत गत अंतरात्मा, अंतरात्मा का मतलब चेतना मन, हाँ अंतरात्मा का क्रिया कैसा होता है, मन की जो क्रिया है चिंतन है ना, चेतना, तो जिसका मनोभाव मेरे प्रति उन्मुख हो गया है, योगिनाम अपि सर्वेषाम सारे योगियों में से सौम्य युक्त तमो मतः, वो मेरे साथ सबसे दृढ़ रूप से युक्त हुआ है। तो योग का उद्देश्य क्या है, योग का उद्देश्य है भगवान के साथ युक्त होना। तो ये भगवान वर्णन किया है इस अध्याय में, हाँ, कि जो हाँ जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो हर जगह में हमको देखता है, और सर्वमपि चामयि पश्यति, और सब कुछ को हम में ही देखता है। तो ये है योगी, असल योग का उद्देश्य क्या होता है, भगवान को दर्शन करना है ना। और भगवान कहाँ है, योगी कहाँ भगवान को दर्शन करते हैं, हृदय में, हृदय में भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, भगवान है हृदय में बैठे हुए हैं। तो अगर हम हमारा चेतना को अपना हृदय में ले सकते हैं तो वहाँ हमको क्या दर्शन होगा, हाँ वहाँ भगवान को दर्शन होगा, हाँ। और भगवान को दर्शन होने से होने के पश्चात भगवान के साथ हमारा संपर्क बनता है। तो उसके कारण ये कह रहे हैं भगवान अंत में, इस षष्ठ अध्याय का अंत में भगवान कह रहे हैं कि सौम्य युक्तो तमो मतः, जो श्रद्धावान भजते जो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजना करते हैं, मेरा भजन करना का मतलब क्या है, हमें भक्ति करते हैं, तो जो मेरा भक्त है वो हमसे सबसे दृढ़ रूप से युक्त हैं। तो आप बताइए जो बुद्धिमान है उनके लिए क्या करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, अष्टांग योग का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास, या भक्त बनना चाहिए, हाँ जो जो तरीका सहज है सरल है उसको ही तो ग्रहण करना बुद्धिमान का विचार है ना। जो अगर कोई काम हम सहज रूप से कर सकते हैं तो उसको कठिन रूप से हम क्यों करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ये भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं पग पग पर, धीरे धीरे अर्जुन को ये समझा रहे हैं, देखो अर्जुन यद्यपि बहुत सारे तरीका हैं परंतु सबसे सही सबसे सरल सबसे आसान तरीका है मेरे भक्त बनना। और भक्त कैसे हम बन सकते हैं, भगवान के भक्त, हाँ मन मना भव मत भक्तो, तुम्हारे मन के द्वारा केवल मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मत जाजी मेरा पूजा करो, और मांग नमस्कुरु हमें प्रणाम करो। और अंत में भगवान जो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तुम्हारे जितने सारे धर्म हैं वो सारे परित्यग करके त्याग करके सही रूप से त्याग करके, देखिए त्याग और परित्याग, परित्याग का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण त्याग जते, मतलब बहुत अच्छा तरह जो त्याग है, मतलब थोड़ा बहुत त्याग नहीं पूर्ण रूप से त्याग, हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माम एकम केवल मेरा ही शरण ले लो, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब मैं तुमसे तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उसके बारे में सोचो मत। तो ये जो निर्देश भगवान दे रहे हैं, हाँ, यद्यपि भगवान ये निर्देश अंत में दे रहे हैं, परंतु इसका विचार हम पहले ही करते हैं, क्योंकि भगवान जो अंत में कह रहे हैं वो अगर हम शुरू से ही ग्रहण कर लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, है ना। उसके कारण गीता का अध्ययन ऐसे व्यक्ति के पास करना चाहिए जिनको सारे गीता के बारे में पूर्ण ज्ञान है। नहीं तो एक एक श्लोक के बाद या एक एक अध्याय के बाद अगर हम अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे क्या उद्देश्य है गीता का। हम जब पहले तीसरे अध्याय पढ़ेंगे तब हम सोचेंगे कि कर्म योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद जब हम ऐसे पंचम अध्याय चौथा अध्याय में तो भगवान वर्णन कर रहे हैं वो कौन है और उनके पास समर्पण करना कर्तव्य है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता है। पंचम अध्याय में हमें समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो षष्ठ अध्याय जो है, जो हम अब विचार कर रहे हैं, ये जब हम आम आदमी जब पढ़ेंगे वो क्या सोचेंगे, ये जो अष्टांग योग अभ्यास करना ही उद्देश्य है गीता का, निर्देश भगवान दे रहे हैं। उसको पता नहीं चलेगा कि अंत में क्या, षष्ठ अध्याय का अंत में क्या बता रहे हैं। यद्यपि भगवान निर्देश दे रहे हैं, देखो अर्जुन भी कह रहे हैं कि ये मन को दमन करना, मन को वश में लाना संभव नहीं है। अर्जुन के लिए संभव नहीं है तो मेरे लिए क्या संभव होगा। परंतु मनुष्य में इतना अहंकार है, वो इतना घमंड है उसको, वो सोचता है ठीक है अर्जुन को नहीं हुआ, अर्जुन नहीं सका, परंतु मैं करूंगा, है ना। ऐसे आदमी सोचते हैं अर्जुन को नहीं हुआ ठीक है मैं करूंगा, मैं तो अर्जुन से भी बड़ा हूं, मैं तो अर्जुन से भी अधिक लायक हूं। तो उसके लिए इस अध्याय के अंत में भगवान फिर कह रहे हैं कि देखो योग का जो असल उद्देश्य है वो सफल होगा केवल भक्ति के द्वारा। योगी नामोपि सर्वेशम मदगते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम सामे युक्त तमामतः। वो मेरे साथ सबसे पूर्णतया, सबसे उत्तम रूप से मेरे साथ युक्त हुए हैं। तो ये ऐसे भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम क्या भगवान की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर समझता है तो भगवान को भक्त जरूर बन जाते हैं। केवल गीता ही नहीं, हमारे सारे शास्त्र का विचार यही है, भगवान को भक्ति करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो ये जब हम कर लेते हैं, भगवान का भक्त जब हम बन जाते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। और भगवान का भक्त बनने का तरीका भी बहुत सरल बन गया है इस युग में। दूसरे युग में भक्ति प्राप्ति होना बहुत मुश्किल होता था, परंतु इस युग में, कली युग में, भगवान को भक्ति करना बहुत ही सहज हो गया, बहुत आसान हो गया है। केवल हम भगवान के पास जाके हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान बहुत सारे गलती हो गए हैं, मैं आपसे दूर चले गए, मैं आपसे दूर चला गया था, और आपसे दूर जाकर हमें बहुत कष्ट मिला, कष्ट अब भी मिल रहा है, परंतु कष्ट तो हम नहीं चाहते हैं, तो कृपा करके आप, आपका चरण कमलों में मुझे स्थान दीजिए, आपका चरण कमलों का सेवा करने का अधिकार दीजिए। ऐसे अगर हम हार्दिक भावना लेकर भगवान को पास प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारा वो प्रार्थना पूर्ण करते हैं, हमारा मन कामना पूर्ण कर देते हैं। और वो प्रार्थना ही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का उद्देश्य है, हे कृष्णा, हे सर्वाकर्षक, हे परम आनंददायक परमेश्वर भगवान, कृपा करके आप इस भौतिक जगत का बंधन से हमें मुक्त कर दीजिए और आपका सेवा करने का सुयोग प्रदान कीजिए। और ये प्रार्थना केवल भगवान से ही नहीं होता है, भगवान के साथ साथ ये प्रार्थना श्रीमती राधा रानी के भी पास निवेदन हो रहा है। ये हरे है राधा रानी, हरा, हरा के संबोधन में है हरे, है। हे राधा, हे राधे, हे कृष्ण, कृपा करके इस भौतिक जगत का बंधन, जहाँ हमें इतने सारे कठिनाई मिल रहा है, क्लेश मिल रहा है, इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत का बंधन से आप हमें मुक्त कर दीजिए और अपना सेवा करने का अधिकार प्रदान कीजिए, ताकि आपका सेवा में युक्त होकर मैं आपका भगवान, आपका सेवक, आपका दास, आपका भक्त बन सकता है। ये कार्य क्या कोई कठिन है? नहीं। भगवान के पास प्रार्थना करना कठिन है? नहीं। परंतु हार्दिक भावना लेकर भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान को मानना पड़ेगा। भगवान है ये विचार पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान को मान लिया, उसके बाद सवाल होता है भगवान है ये मान लिया, परंतु भगवान कौन है? तब ये विचार आता है, भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है, ये विश्वास पूर्ण रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। तब कृष्ण के पास ये प्रार्थना मंजूर होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये प्रार्थना जब हम करेंगे भगवान के पास, तो भगवान क्या ये प्रार्थना मंजूर करेंगे? हाँ, पहले सवाल तो ये होता है, ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, भगवान के सुन रहे हैं? भगवान सुन रहे हैं? हाँ, ये विचार बहुत जबरदस्त मन में लाना चाहिए, भगवान सुन रहे हैं। हम जब भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। भगवान ये काठ या पत्थर नहीं है, भगवान ये धातु से बना नहीं है, ये जो विग्रह हैं ये स्वयं भगवान हैं। और हम जब उनके पास ये पेश कर रहे हैं प्रार्थना, भगवान हमारा भावना अगर हार्दिक होगा, सही होगा, सरल होगा, तो भगवान ये प्रार्थना जरूर मंजूर करेंगे। तो ये प्रार्थना लेके हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र जप या कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं, ठीक है, आज प्रश्न नहीं करेंगे, अब थोड़ा हम कीर्तन करेंगे। हम कीर्तन करेंगे, इसका मतलब क्या है? हम प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने, है ना? हरे कृष्णा। व्हेन डिड यू कम? कब आए? आज ही आए। अच्छा, बैठो। हरे कृष्णा। तो प्रार्थना, कीर्तन करेंगे मतलब हाँ, हम भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे। और सामने कौन है हमारे? राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, तो आप थोड़ा विचार कीजिए, भगवान सुनेंगे या नहीं? अब पूछिए उनको। हाँ, हे मदन मोहन, हम अगर कीर्तन करेंगे तो तुम सुनोगे क्या? हाँ, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तुम करो, मैं देखता हूं तुम्हारा मन की भावना कैसा है। तुम क्या मेरे सुनने के लिए मेरे पास प्रार्थना कर रहे हो, या और कुछ प्राप्ति के लिए तुम ये प्रार्थना कर रहे हो? तुम क्या मेरा सेवा चाहते हो, या दौलत चाहते हो, संपदा चाहते हो, भौतिक वस्तु का प्राप्ति होने को कामना कर रहे हो? तो ये विचार हमें करना चाहिए कि भगवान आप कृपा करिए कीजिए, ताकि हम केवल आपका सेवा, आपका भक्ति ही केवल मांग सके, और इसके अलावा और कुछ नहीं हमें चाहना है।